दिलाराम बाबा के दिल पर विराजमान, दिल तख्त नशीन, सबके दिल को आराम देने वाले, जैसे बाबा इस बिगड़े हुए संसार को सुधारते हैं, वैसे बाबा के बच्चे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बिगड़े हुए दिल को सुधारते हैं। ऐसी प्रेम मूरत, शांत मूरत, हमेशा सारे विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर अपनी जिस्मानी और रूहानी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे आदरणीय भ्राता जी हम सभी के समक्ष पधारे हैं, उन सभी का हम स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। भ्राता जी ने दिल्ली में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं। सोल, माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा को रिसर्च करने के कारण इंग्लैंड से आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है। सन 2000 में यूएसए के होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर आप बहुत अथक रूप से कार्यरत है। जैसे डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वो बात, वो खूबी हम सभी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से अनुभव करते हैं। सभी डॉक्टर्स के लिए ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन जिनका रूहानी सर्जन, जिनका शिक्षक ही स्वयं भगवान हो, उनके लिए ही ये बात लागू हो जाती है। आप बहुत अथक रूप से यज्ञ सेवा करते हैं और बाबा की सेवा में, बाबा के प्रत्यक्षता में आपका बहुत बहुत ऊंचा रोल है। आपके बारे में तो हम जितना सुना है उतना कम है, क्योंकि हम जानते हैं आपकी सेवाएं कितनी ऊंची है, कितनी अथक होकर सेवाएं करते हैं। फिर भी कुछ चार लाइन में आपके बारे में कुछ कहेंगे। शुभ भावना से भरे स्नेहल संकल्प, अपनापन आप में अपार देखा, शीतल बोली ईश्वरी उपकार देखा, अपनी सेवा से दिलाराम को प्रत्यक्ष करने वाले, आपके दिल में बसे हुए उस दिलाराम को हमने देखा, उस दिलाराम को हमने देखा। तो आइए सुनते हैं भ्राता जी से, भ्राता सतीश गुप्ता जी से सच्ची और साफ दिल से कैसी मनसा सेवा करें। विषय है सच्ची दिल, साफ दिल और मनसा सेवा। ओम शांति।
ओम शांति। अभी दो दिन पहले ही, परसों ही हमने बाबा से मुलाकात की और बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आश हम सभी ने सुनी। अभी बाबा चाहते हैं कि हम सभी का ब्रह्मा बाबा से प्यार है और बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी हम सब क्या बन जाएं, बाप समान बन जाएं। और बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा मनजीत बनना है ना? तो मनजीत बनने के लिए भी, मनजीते जगजीत बनने के लिए, उससे पहले हमारी क्या स्थिति हो ये हमें देखना है। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है सच्ची दिल, साफ दिल। अगर सच्ची दिल, साफ दिल हो तो ही हम मनजीत बन सकते हैं। अगर हमारी दिल सच्ची नहीं है, साफ नहीं है, तो हम हजार कोशिश करें तो भी मनजीत नहीं बन सकेंगे। तो अब आज हम देखेंगे कि मनजीत बनने के लिए कैसे हम अपनी सच्ची दिल और साफ दिल रखें, और साथ साथ सच्ची दिल और साफ दिल हो तो ही हम बेहद की मनसा सेवा कर सकते हैं, सच्ची मनसा सेवा कर सकते हैं। अभी हम सभी इसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि सच्ची दिल दिल क्या चीज है। बेसिकली दिल के बारे में बहुत गायन है, सुनते भी हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, सभी ने सुना है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो पहले वो दिल क्या चीज है। एक तो दिल ये है फिजिकल दिल, स्थूल दिल है ना, तो इस दिल की बात नहीं है, आत्मा का भी एक दिल है। वो आत्मा का दिल क्या है, आत्मा की तीन शक्तियां हमने सबने सुनी है, मन बुद्धि और संस्कार। तो जो बुद्धि है ना आत्मा की पहली शक्ति, जैसे आत्मा एक ज्योति बिंदु है और आत्मा की जो पहली शक्ति है वो है बुद्धि। और बुद्धि क्या है, बुद्धि से जैसे आत्मा से, जैसे आपने लाइट देखी है, ग्लो है, लाइट के आसपास एकदम ग्लो है ना, जो बल्ब के आसपास ग्लो देखते हैं, ऐसे ही जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उससे सात गुण कहो, सात ऊर्जा कहो, सात एनर्जी कहो, निकलती रहती है। इसी से लगभग 2.5 इंच अंदर आत्मा का निवास है। और जो आत्मा का जो सबसे नजदीक जो एरिया है ना, नजदीक जो स्थान है, वहां पर ये एनर्जी सबसे अधिक रहती है। जैसे सबसे अधिक लाइट के बल्ब के पास सबसे ज्यादा लाइट रहती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं रहती है ना। बल्ब भी देखो गर्म हो जाता है ना, सबसे ज्यादा वहीं रहती है। तो ये जो आत्मा के साथ एनर्जी है या गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, तो ये सात जो आत्मा के जो गुण हैं, ये जो आत्मा की एनर्जी है जो आत्मा से निकलती रहती है और वो आत्मा के आसपास सबसे ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, फिर उसके बाद सारे शरीर में फैलती है जिससे कि शरीर चलता है। और ये जो चीज है, जैसे कहते हैं ना कोई चीज का दिल, उसका दिल जैसे जो यहां पर सबसे अधिक सात चीजें हैं उसी को दिल कहते हैं या उसी को बुद्धि भी कहते हैं। दिल को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। मतलब अंतरात्मा माना अंदर की आत्मा, मतलब अंदर की आत्मा का बिल्कुल नजदीक जो जो स्थान कहो, जो स्पेस कहो, वहां पर ये है दिल। सत्व प्रधान आत्मा जो होती है उसमें सातों गुण से ये दिल उसकी भरपूर होती है, सातों गुणों से, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, रूहानी प्रेम से भरपूर, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर। किंतु जब आत्मा तमोप्रधान हो जाती है, सत्व प्रधान से सत्युग में सत्व प्रधान, रज त्रेता में रज सतो, इसमें कॉपर एज में रजो और कलयुग में शुरू में तमो और अभी तमो प्रधान, तो ये सातों गुण तो रहते हैं। जैसे आज की मुरली हमने सबने सुनी कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है किंतु पूरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी जाके रहती है। और उसमें अभी क्या हुआ, आत्मा की जो जो दिल है उसमें देह अभिमान आ गया है, बॉडी कॉन्शियसनेस देह भान आ गया है। एक्चुअली इसमें चार बातें आ गई हैं। अब दिल में, पहले दिल में सिर्फ यही था, पहले दिल में सिर्फ मैं आत्मा हूं यही था। एक्चुअली दिल में पहले चार बातें थी, एबीसीडी, इंग्लिश में कहते हैं एबीसीडी था। ए फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, वही मेरा माँ है, वही मेरा पिता है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरे बंधु है, सखा है, वही मेरा साजन है और वही मेरा सर्जन भी है। बाबा को, बाबा कई बार बाबा नहीं है, बाबा कई बार बच्चा भी बन जाता है ना, वही मेरा बच्चा भी है, राइट। तो मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार एक ड्रामा है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और इस एक्टर, इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, शिव बाबा, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। भी हमारे संबंध हैं, पति पत्नी बच्चा भाई बहन माता पिता, वो हम कर्म सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के साथ हैं। और परमात्मा उसको उस जो भी हमने उनके साथ अच्छा या बुरा किया हुआ है उसके अनुसार उसको चला रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो एबीसीडी जैसे ये आत्मा में भरा रहता है और इस एबीसीडी से ही ज्ञान पवित्रता आती है। ज्ञान का सार रूप क्या है? एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। इसी का जो सार, इसी का जो, इसी से क्या पैदा होता है मन में? पवित्रता। जब मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्वसंबंध उसके साथ हैं, और संसार एक नाटक है, इसमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, तो मन पवित्र हो गया? नहीं हो गया। पवित्रता आई तो शांति आ जाती है, शांति आई तो रूहानी प्रेम पैदा हो जाता है, रूहानी प्रेम पैदा हुआ तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति हुई तो आनंद आने लगता है, आनंद आने लगा तो शक्ति आने लगती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को मतलब विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो एक्चुअली आत्मा से ये सातों एनर्जी निकलती रहती है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां। सत्व प्रधान आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर रहती है, किंतु जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डल होती जाती है, डल होने से, डिस्चार्ज होने से धीरे धीरे देह अभिमान आने लगता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगता है, देह भान आने लगता है। तो देह, अब अभी जो आत्मा में क्या बात है कि तमो प्रधान आत्मा में चार बातें आ जाती है। एक तो देह, अपनी देह उस कॉन्शियस में अंतरात्मा में एंटर कर जाती है, घुस जाती है जैसे ना। दूसरा देह के संबंध, माता पिता भाई बहन टीचर, भाई बहन पत्नी पति बच्चे, ये सब उसमें कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तीसरी बात देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो ये सात गुण है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां। और देह का, आत्मा का संस्कार क्या है? रहम दिल और कल्याण, कल्याणकारी। किंतु देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव है पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये जैसे आत्मा में दिल में घुस गए हैं, अंदर गहरे बैठ गए हैं, जैसे कीड़ा लग जाता है ना पेड़ को तो सब पत्ते मुरझा जाते हैं, ऐसे ही आत्मा में दिल में ये पांच विकार घुस गए हैं, ये जैसे अंदर बहुत गहरे बैठ गए हैं। इसलिए कितने समय तक छोड़ देने के बाद भी स्वप्न में आते रहते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। तो ये पांच चीजें हमारे स्वभाव, देह का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, देह का स्वभाव है। और संस्कार क्या आत्मा को पड़ गए? जो देह के संस्कार क्या है? आलस्य। सबसे बड़ा संस्कार जो देह का है आलस्य। जहां देह होती है ना, देह अपने को समझते तो अपने आप आलस्य आता, आज नींद अच्छी नहीं की, आज नींद अच्छी नहीं आई, सारा दिन सुस्ती करते रहेंगे, अलबेलापन, छोड़ो ना आज, छोड़ो कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो क्या पता विनाश 2012 में होगा नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, देख लेंगे, हो जाएगा, चलो हमारा नंबर भी आ जाएगा बाद में, कभी आ जाएगा, कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे, है ना। अलबेलापन ये देह का संस्कार है। फिर दूसरों में दोष निकालने की आदत, ये भी देह का संस्कार है, दूसरों में दोष निकालते ही रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो वैसा है, खुद को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। फिर बदला लेने की भावना, किसी ने मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी उससे बदला जरूर लूं। फिर शक करना, ये देह का संस्कार है। अनुमान लगाना, ये देह का संस्कार है। फिर चिंता करना, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, भय, ये भी देह का संस्कार है। और फिर जल्दीबाजी करना, हर बात में प्रेशर महसूस करना, काम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, जैसे मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, मैं ही राइट हूं, ये भी देह का संस्कार है। और आखिरी देह का संस्कार है दृश्य। तो ये भी, ये दस जो है ना कि मुख्य संस्कार, ये भी अंदर घुस गए हैं दिल में, हाँ जी, ये भी अंदर दिल में घुस गए हैं अंदर। और फिर देह के पदार्थ, अपने कपड़े हैं, है ना, जो नजदीक की चीजें ना, जो भी हमारी, जो भी हम डेली यूज करते हैं ना चीजें, कपड़े हैं, अपने घर का मकान हमारा है, घर में कार है, हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, ये भी सब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्या होता है दिल में, दिल ऊपर नीचे होती है ना, इस दिल का कनेक्शन इस दिल से भी है, इन चारों बातों में कुछ ऊपर नीचे होता है तो यहां भी ऊपर नीचे होता है, ऐसी बात है कि नहीं, इस देह में ऊपर नीचे कहीं हो तो यहां भी ऊपर नीचे होता है ना। देह के संबंध में कोई बच्चा बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, माता पिता बीमार हो जाए, इसको भी कुछ कुछ होता है ना, यहां होता है तो यहां भी होता है नहीं। देह का स्वभाव संस्कार, कोई काम, काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, देखो दिल में असर होता है ना उसका, तुरंत असर होता है, मोह है, अहंकार है, संस्कार है, आलस अलबेलापन, इसका असर तुरंत यहां होगा, है ना, होता है नहीं होता है? आपका कहीं प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए, कोई आपके मकान काबू कर ले, कोई आपकी चीज को हड़प ले, है ना, कोई चीज आपकी चोरी हो जाए, क्या होता है, होता ना इधर दिल में कुछ कुछ, है ना। तो ये अभी दिल में ये चारों बातें अंदर चली, गहरी चली गई है। तो सच्ची दिल माना क्या है, सच्ची दिल माना जिस दिल में अंतरात्मा, दिल माना अंतरात्मा, जिस दिल में यह है कि मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, सर्वशक्ति स्वरूप आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जिस दिल में एबीसीडी समाया हुआ है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सब संबंध उसके साथ हैं, और संसार एक नटामा है, नाटक है, वो है सच्ची दिल। ये मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ये है झूठी दिल। कहीं भी आपके अंदर, हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, देह का अभिमान है, अपनी डिग्री विशेषता का अभिमान है, तो ये झूठी दिल है। मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं बहुत समझदार हूं, ये है झूठी दिल। समझ में आई ये बात आपको? सच्ची दिल माना, मैं जो मेरी रियलिटी है, जो मेरी सच्चाई है, मेरी सच्चाई क्या है, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान सागर पिता की संतान हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं, शांति के सागर की संतान हूं, ये फीलिंग मन में सदा रहना, ये सच्ची दिल है। जरा भी देह का अभिमान आया, देह के संबंधों का भान आया, मैं मां, जैसे बताया मां बाप टीचर, मतलब मां बाप के समझना, अपने आप को पति पत्नी समझना, अपने बिजनेस प्रोफेशन में समझना, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूं, बहुत पैसे वाला हूं, है ना, ये सच्ची दिल नहीं है। ये तो मेरा रोल है समाज में, ये मेरी ड्यूटी है, मां की ड्यूटी है, बाप की ड्यूटी है, मुझे बाप की ड्यूटी मिली है निभाने के लिए, मुझे डॉक्टर की ड्यूटी मिली है निभाने के लिए, जिन भाई बहनों की मुझे सेवा करनी है उसका मुझे, उनकी सेवा करने के लिए मुझे ये रोल मिला है। मैं हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहब राजी है ना, तो जिस दिल में ये सच्ची दिल है उस पर साहब राजी, अर्थात बाबा सदा उसके साथ है। جو اپنے کو سدا یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوں, اکال تک نشین آتما ہوں. جو اکال تک نشین ہے, اکال تک اس شریر کو کہتے ہیں. اکال تک کون ہے؟ یہ شریر ہے اکال تک, رائٹ. آتما اس میں بیٹھی ہے اور آتما اکال مورت ہے. تو جو سدا اپنے کو یہاں چمکتا ہوا ستارہ انوبھو کرتا ہے ارتھات اکال تک نشین ہے, وہ پرماتم دل تک نشین اپنے آپ ہی ہے. وہ سدائی پرماتم دل تک نشین ارتھات سچے دل پر صاحب راجی ہے. وہ سدائی اپنے کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے میں پرماتما کے دل پہ بیٹھا ہوں. پھر صاف دل کیا چیز ہے؟ صاف دل کا ارتھ ہے کہ جس میرا تو ایک شیو بابا دوسرا نہ کوئی, جس دل میں ایک باپ کے سوائے دوسرا کوئی نہ ہو وہ ہے صاف دل. کوئی دے نہیں, کوئی دے کا سمبندھ نہیں, دے کا پدارتھ نہیں, دے کا سبھاؤ سنسکار نہیں, کوئی اور بات ہے ہی نہیں بالکل بھی. اگر بیمار بھی ہو تو ڈاکٹر یاد نہیں آنا چاہیے. کون یاد آنا چاہیے؟ شیو بابا یاد آنا چاہیے. سب سے بڑا ڈاکٹر کون بولو, سبھی سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر بھی کس کو یاد کرتے ہیں؟ سرجن آپریشن کرتا ہے, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, کس کو یاد کر کے دیتا ہے؟ بابا کو یاد کر کے دیتا ہے. تو ہم کیوں نہیں ڈاکٹر کے ڈاکٹر کو یاد کریں؟ نہیں, وہ سچ مچ جادو جیسا اثر کرتا ہے. ڈاکٹر کی دوائی تو اثر کرے نہیں کرے پتہ نہیں, یہ تو ونڈرفل ہے بابا کا, بابا کی دوائی ہے نا. سچ مچ میں آپ اس کو یوز کر کے دیکھو. میں نے تو بہت بار یوز کر کے دیکھا ہے. مجھے بھی کبھی جب 1996 میں جب ہاسپٹل میں کاریہ کرتے ہیں, مجھے کبھی ایک بار بہت زور سے انجائنا ہوا, بہت زور سے سیویئر پین ہوا ہارٹ کا, اور اتنا زور سے درد ہوا تھا کہ پھر مجھے بعد میں بتایا گیا کہ آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے. اور اس ہارٹ کی تکلیف ایسی تھی, ایک تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مجھے ہارٹ اٹیک نہیں تھا. مجھے میرے جب ایکو کیا گیا تو باہر سے یو ایس کے ڈاکٹر نے ایکو کیا میرا, میں خود ہارٹ کا ڈاکٹر تھا تو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں, بابا نے مجھے وہ سیوا دی ہے. تو میرا ایکو کیا تو مجھے پتہ لگا میری دیواریں بہت موٹی ہو گئی ہیں ہارٹ کی, اور ایسا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. اور ہارٹ کی اس میں مجھے تو اتنی زور سے درد ہوتی تھی کہ مجھے ہر دھڑکن میں درد ہوتا تھا, ہر دھڑکن میں نا. ہارٹ کی پمپنگ نارملی 60% ہوتی, میری ہارٹ کی پمپنگ 90% ہو گئی تھی. تو ہر دھڑکن ایک منٹ میں 70 بار دل ایسے سے کرتا ہے نا, تو میرا دل آپ کا دل ایسے سے کرتا, میرا دل یوں یوں کرتا تھا, یوں زور سے, بہت زور سے, اور مجھے ہر بیٹ درد کرتی تھی. اور رات کے ٹائم تو میرے کو نیند نہیں آتی تھی, مطلب رات کے ٹائم درد بڑھ جاتا تھا. ماؤنٹ آبو میں رہتے ہوئے رات کو تو مطلب میں بیٹھ ہی نہیں پاتا, لیٹ ہی نہیں پاتا تھا, لیٹ ہی نہیں سکتا تھا. بیٹھا تھا تھوڑے تھوڑے سانس آتا تھا, لیٹتے تو ایک دم سانس کٹ جاتا تھا, اور دھڑکن ایک دم ایریگولر. خود ڈاکٹر ہونے کے ناطے, خود کارڈیولوجسٹ ہونے کے ناطے دھڑکن دیکھتا رہتا تھا بیٹھا بیٹھا, رات کو ادھر درد ہوتا تھا ادھر دھڑکن دیکھتا تھا, ابھی دھڑکن گئی کی گئی, ابھی ہارٹ گیا کی گیا, ایسا فیل ہوتا ابھی گیا, ابھی ہارٹ ٹوٹنے والا ہے, چکر آتے تھے ایسے. تو سب سو جاتے تھے, میں صرف اکیلا, اور ڈاکٹر ہاسپٹل میں فون کروں کس کو فون کروں تو بولتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی تو کارڈیولوجسٹ ہیں, ہمارے پاس تو کارڈیولوجسٹ کوئی ہے بھی نہیں, آپ خود ہی تو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, آپ سے اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. آکسیجن کمرے میں لگتا تھا, آکسیجن لگا لیتا تو بھی درد آرام نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں شیو بابا کو یاد کرنا شروع کرتا تھا رات کو 11 بجے. جیسے ہی بابا کو یاد کرتا درد کم ہونے لگتا تھا, دھڑکن نبض ہاتھ میں رہتی تھی, نبض ٹھیک ہونے لگتی تھی, ریگولر ہونے لگتی تھی. جیسے ہی ہارٹ کا درد کم ہوتا, دھڑکن ریگولر ہوتی, میں پھر تھوڑا سونے کی کوشش کرتا تھا. تو جیسے سونے کی کوشش کرتا پھر درد شروع ہو جاتا, دھڑکن پھر ایریگولر ہو جاتی, گھبراہٹ ہونے لگتی, پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا, پھر بابا کو یاد کرنا شروع کرتا بیٹھ کے, پھر بیٹھنا بیٹھ کے کرتا تو پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا, دھڑکن بھی ٹھیک ہو جاتا, پھر دوبارہ لیٹنے کی کوشش کرتا, پھر اٹھ کے بیٹھنا پڑتا. تو ایسے مجھے کتنی رات ایسے بیتتی ہوں گی, نہ جانے کب میں 2:30 بجے سوتا ہوں گا یا 3 بجے سوتا ہوں گا نا. تو درد ایسا چلتا رہتا تھا, بابا کو یاد کرتا رہتا تھا, اور پھر 3 بجے سوتا تھا, 2:30 بجے سوتا تھا, پھر 4 بجے واپس اٹھ جاتا تھا, پھر امرت ویلا کرتا تھا. ویسے میرا دو تین مہینے مطلب یہ چلا، تین مہینے لگ بھگ چلا ہوگا ایسے، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ دو سال سے آپ زندہ، زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. جو بیماری مجھے تھی نا دو سال، 96 کی بات ہے، 97 کی، دو سال آپ کی عمر ہے. میرے ساتھ اسی سمے ڈاکٹر ایک تھے، مراد علی مارن، انڈسٹریز منسٹر تھے نا بھارت کے، ان کو بھی یہی بیماری تھی جو مجھے تھی، تو وہ تو چلے گئے. اور میرے کو بھی کہا گیا دو سال میں آپ مر جائیں گے، جو کچھ بھی ہے لکھ کے آپ چلے جاؤ. تو میں تو من سے تو تیار ہو گیا تھا جانے کے لیے، کنتو میں نے پھر میڈیٹیشن کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، تو جیسے جیسے کرتا گیا تو درد کم ہوتا چلا گیا. اور جب 6 مہینے میں دوبارہ جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو میرے جو ہارٹ کی دیوار 21 ملی میٹر موٹی ہو گئی تھی، وہ واپس 10 ملی میٹر نارمل سائز ہوتا ہے، واپس نارمل ہو گئی تھی. تو یہ بابا کی کمال تھی. جو بیماری لا علاج تھی نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے سچی دل پر صاحب راجی ہوتا ہے. اور میں نے کوئی پیار سے میڈیٹیشن نہیں کیا تھا، مجبوری میں کیا تھا، مجبوری میں نا رات کو نیند نہیں آتی تھی، ساری ساری رات جاگ کے یوگ کرنا ہوتا تھا نا. جیسے درد کم ہوتا تھا تو میں ترنت لیٹ جاتا تھا، اور ترنت لیٹتے ہی ترنت اٹھنا پڑتا تھا کیونکہ ایک دم سانس اٹھ جاتا تھا. تو بابا نے کیسے پریکٹیکلی میڈیٹیشن کرنا سکھایا، کیسے یوگ کا پریوگ کرنا سکھایا. اور جو بیماری کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جس کا علاج نہیں تھا، اس کو اس نے ٹھیک کر کے دکھایا. جو امریکہ سے جو ڈاکٹر آیا تھا جس نے میرا ایکو کیا، کہتا آپ نے کیا کیا، کیسے ٹھیک ہو گیا یہ؟ اب اسے کیا بتاؤں کیسے ٹھیک ہو گیا. اور پھر 97 ستمبر 97 میں میرا ہارٹ ٹھیک ہوا، ایکو میں پروو ہوا، اور اکتوبر 97 میں مجھے لیٹر آ گیا دلی سے ہیلتھ منسٹری سے کہ آپ کا یہ جو کیٹ پروجیکٹ ہم نے گورنمنٹ کو اپلائی کیا ہوا تھا پاس ہو گیا. تو پھر یہ گورنمنٹ سے پروجیکٹ پاس ہو گیا، تو پھر اس کے بعد یہ پروگرام کیٹ ہارٹ کا پروگرام شروع ہوا. میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ راجیوگ سے کیسے ہارٹ کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے. یہ میرا انوبھو، باپ کے ساتھ کا انوبھو کہ کیسے ہارٹ ٹھیک ہوتا ہے، وہ میرا انوبھو اندر سے بولتا تھا. مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، میں کلاس کرانے سے بہت ڈرتا تھا، اسٹیج پہ جانے سے بہت ڈرتا تھا، مجھے پسینے آ جاتے تھے بولنے سے نا، دل میں دھک 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 ہوتی تھی نا، ہاتھ کانپنے لگتے تھے. کہ تو یہ بابا کا انوبھو، بابا کے ساتھ کا انوبھو، ساری ساری رات کا انوبھو، یوگ کا انوبھو، اس نے مجھے بولنا سکھایا، اس نے مجھے وہ انوبھو لوگوں کو شیئر کرنا سکھایا. جو دن کی تینوں آرٹریز بلاک ہوتی تھی، جن کے پاس بائی پاس کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اینجیو پلاسٹک کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا بائی پاس کرا کے بھی فیل ہو گئے تھے، اینجیو پلاسٹک کرا کے بھی فیل ہو گئے تھے، جن کی ہارٹ کی پمپنگ پاور لگ بھگ بہت کم ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے بالکل نہ کر دی تھی، تو وہ پیشنٹ سے میں پھر باتیں کرتا تھا، اپنا انوبھو سناتا تھا، اور جو میڈیکل سائنس میں جو پڑھا تھا میڈیکل سائنس وہ ان سے شیئر کرتا تھا. پھر اس سے ان کی بلاکیج کھلنی شروع ہوئی. تو سچی دل سے جو ہم کام کرتے ہیں، اور جب مجبوری میں کیا ہوتا ہے، جب سبھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو میرے دل میں کیا رہا، اب تو جانے کا ٹائم آ گیا ہے نا، اب کوئی اور ہے ہی نہیں، ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، سب ساتھی بھی دکھائی دیے، جو ساتھی تھے وہ بھی دیکھ لیے کہ کیسے ساتھی ہیں، دنیا میں ساتھی کیسے ہوتے ہیں، سب دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیے، سبھی کی ریئلٹی پتہ لگ گئی کہ اس کو دیکھ اس کے علاوہ کوئی آپ کا نہیں ہے. صاف دل اندر سے نکل گیا، کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، صرف ایک بابا ہی میرا ہے، اور یہ پکا ہو گیا میں صرف ایک آتما ہوں، شہید تو ہی چھوٹ جائے گا، بس میرے کو جانا ہے ابھی گھر. یہ بھی وید کا ویراگ بھی آ گیا ہے. تو سچی دل اور پھر صاف دل بھی ہو گئی، اور اس پر صاحب راجی ہوا، تو کیسے لا علاج بیماری ٹھیک ہو گئی. اور اسی انوبھو سے کیٹ ہارٹ کا پروگرام شروع ہوا، اسی سے آج کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. آج برہما کماریز اس بات کے لیے فیمس ہو گئے سارے وشو میں کہ برہما کماریز میں بنا ہارٹ کے آپریشن کے ہارٹ کا علاج ہوتا ہے. نہیں ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے بابا کی کمال ہے. کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ 97. ابھی کتنا ہے؟ 2011. میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں ابھی؟ دو سال میں جانا تھا نا مجھے، تو 14 سال ہو گئے اس بات کو نا. تو یہ سچی دل کی کمال ہے. صاف سچی دل مانا اے بی سی ڈی، گیان سوروپ، پوتر سوروپ، شانت سوروپ، پریم سوروپ، سکھ سوروپ، آنند سوروپ، شکتی سوروپ. بابا کا ہاتھ میرے مستک پہ، یہ فیل کرتے رہنا بابا میرے ساتھ ہے، بابا کی چھتر چھایا میرے ساتھ ہے. یہ ہے سچی دل. صاف دل مانا میرا تو ایک شیو بابا، دوسرا نہ کوئی. اور دل کے باہر ہی وویک ہے، دل ہے نا جو، دل کے باہر ہی وویک ہے. اگر انتر آتما یا دل تمو پردھان ہے، اس میں وکار بھرے ہوئے ہیں، پانچ وکار اور اس سنسکار جو بتایا میں نے 10، آلس البیلاپن، دوسروں میں دوشی کالنا، شک انومان، چنتا بھئے، اور جلدی بازی کرنا اور ایرشا کرنا کسی سے، اگر یہ بھرا ہوا ہے تو وویک آسوری ہو جاتا ہے. وویک مانا پرکھنے کی شکتی. وویک آسوری ہوا تو بدھی کیسی ہو جاتی ہے؟ بھرشت ہو جاتی ہے. بدھی بھرشت ہو جاتی ہے تو چت چنچل ہو جاتا ہے. یہ آپس میں رکھیے ڈھچاؤ چیزیں، دل، وویک، بدھی اور چت. اگر بدھی میں، دل میں ساتو گن بھرے ہوئے ہیں، ستو گنی بدھی، اس کو کہتے ہیں ستو گنی بدھی بھی کہتے ہیں. جس دل میں سات گن بھرے ہوئے ہیں اسے ستو گنی بدھی بھی کہتے ہیں. اگر یہ بدھی ہماری، ہمارا دل جو ہے ستو گنی ہے، جس میں ایک بات کے سوائے کچھ نہیں ہے، تو ہمارا وویک کیسا ہو جاتا ہے؟ ایشوریہ ہو جاتا ہے، ایشوری وویک بن جاتا ہے. ہماری بابا جیسی پرکھنے کی شکتی ہو جاتی ہے، اور جب بابا جیسی پرکھنے کی شکتی ہو جاتی ہے تو ہماری نرنے شکتی کیسی ہو جاتی ہے؟ بدھی کیسی ہو جاتی ہے؟ دیویہ ہو جاتی ہے، ڈیوائن. ہم رائٹ رانگ کو صحیح پرکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں پرکھ سکتے ہیں. زیادہ سوچنے کی آوشیکتا نہیں ہے. اور پھر ہمارا چت ایکاگر ہو جاتا ہے، چت سوچھ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تبھی کہا کہ نا ستیہ چت آنند سوروپ. اگر ستیہ ہے، بدھی ستیہ ہے، دل ستیہ ہے، تو چت کیسا ہے ہمارا؟ صاف ہے، چت ایکاگر ہے. اور چت کے باہر کیا ہے؟ چت کو سب کانشیس مائنڈ بھی کہتے ہیں. اور چت کے باہر ہے مائنڈ. مائنڈ میں چار باتیں ہیں، من میں چار باتیں ہیں. پہلی ہے سمرتی، دوسری ہے ورتی، تیسری ہے بھاونا، چوتھے ہیں سنکلپ، وچار. تو اگر ہماری دل میں، اگر کون ہے دل میں، اگر دلارام ہے، سچی دل، صاف دل میں دلارام رہتا ہی رہتا ہے، شیو بابا رہتا ہی رہتا ہے، صاحب سدا اس پہ راجی ہی راجی ہے، تو اس دل میں جس میں دلارام ہے، جس کی وویک ایشوریہ ہے، جس کی بدھی دیویہ ہے، جس کا چت ایکاگر ہے، صاف ہے، اس کی سمرتی میں بابا ہے، سدا ہی ہے. جس کی سمرتی میں بابا ہے اس کی ورتی سدا آتمک رہتی ہے، اس کو سب آتمائیں دکھائی دیتی ہیں، سب کے پرتی آتمک ویوہار رہتا ہی رہتا ہے. اور جس کی ورتی آتمک ہے اس کی بھاونا سدا سب کے پرتی شبھ رہتی ہے، شبھ بھاونا، شبھ کامنا رہتی ہے، پیور وشز اینڈ گڈ فیلنگس. اور جس کی بھاونا شبھ ہے اس کے من میں سدا سنکلپ کیسے چلتے ہیں؟ شریشٹ، شدھ اور کلیانکاری سنکلپ چلتے ہیں. تو ایسا من جس کی سمرتی میں بابا ہو، ورتی سب کے پرتی آتمک ہو، بھاونا سب کے پرتی شبھ ہو، سنکلپ شدھ ہو، شریشٹ ہو، کلیانکاری ہو، وہ من آتما راجا ہے. جس دل، جو سچی دل ہے، صاف دل ہے، وہ آتما راجا ہے. من اس کا ساتھی بن جاتا ہے. जिस मन में बाबा है, पता है ना, मन माना क्या, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। तो जिस मन में बाबा है, स्मृति में बाबा है, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक है, भावना सबके प्रति शुभ है, संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध कल्याणकारी है, वो मन कैसा होगा, वो मन कैसा होगा, उस मन में, उस मन की स्पीड स्लो होगी, वो मन पॉजिटिव संकल्प ही करेगा, अच्छे संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प ही चलेंगे। और श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प चलेंगे तो क्या होगा, वो उसको जब स्लो चल रहा है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये संस्कार क्या चीज है, संस्कार स्मृति ही संस्कार है, जो कुछ हम करते हैं ना बचपन से लेकर अब तक वही हमारे संस्कार है, और पिछले जन्मों के संस्कार भी आत्मा ले आती है और ये सब यहां स्टोर हो जाते हैं। जो कुछ भी हमने गलत कर्म किए हैं बचपन से लेकर अभी तक, विकारों के वश, देह अभिमान के वश, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ मोह अहंकार के वश, या आलस के वश है, अलबेलेपन के वश, शक अनुमान के वश, चिंता भय के वश, जल्दीबाजी के वश, ईर्ष्या के वश, वो सब विकर्म बन गए, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गए। तो जैसे जैसे हम जब हम बाबा की याद में, दिलाराम को दिल में रखते हुए जब हम संकल्प अब करते हैं, और दृढ़ता से, चार बातें चाहिए हमें जीवन में, अगर हमें मनजीत बनना है तो चार बातें चाहिए, पहला चाहिए निश्चय, दूसरा चाहिए विश्वास, तीसरा चाहिए एकाग्रता, चौथी चाहिए दृढ़ता। जब हम कोई चीज पे, जब हमें निश्चय जैसे हुआ ना, पहले बात पे निश्चय हुआ हमको, बाबा ने, हम बाबा की रोज मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा से निश्चय हुआ कि बाबा हमारा है ना, हम बाप के बच्चे हैं। जब बाबा पे निश्चय हुआ कि दुनिया का जितना भी प्यार है वो सब खोखला है, स्वार्थी है, सिर्फ एक वो ही प्यार निस्वार्थ है, तो जब उस पे निश्चय हुआ तो फिर स्वयं पे निश्चय होने लगता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम ही तो देवता थे, अभी तुम ही तो स्वर्ग में थे, तुम ही तो मालिक बनने वाले हो, पहले अपने पे निश्चय नहीं होता है, स्व पे निश्चय नहीं होता है, नहीं मैं कहां देवता बन सकता हूं, मैं तो इतना गंदा हूं, मैं तो ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, मैं कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे बन सकती हूं। जब बाबा कहता नहीं बच्चे तुम ही थे, बाबा फिर साक्षात्कार भी करा देता है, नहीं बच्चे तुम ही थे, देखो ना तुम्हारा, तुम ही तो थे, देखो तुम ही तो हो, ये देखो, ये तुम हो, ये तुम देवता हो, ये तुम हो, अभी तुम हो, यही तुम बनने वाले हो, दिखा देता है बाबा। तो जब बाबा ऐसा दिखा देता है तो फिर हम उसके जैसे, फिर हमें सौ पे निश्चय होने लगता है, सौ पे निश्चय होने लगता है, फिर ड्रामा पे निश्चय होने लगता है, और जब ड्रामा पे निश्चय होने लगता है तो फिर परिवार पे निश्चय होने लगता है। ये सीक्वेंस में निश्चय होता है, एक साथ नहीं होता है। और जब ये चार निश्चय हमारे अंदर आ जाते हैं तो विश्वास होने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, डॉक्टर की एग्जाम्पल देता हूं, कोई डॉक्टर की डिग्री देख के हमें निश्चय होता है कि भाई हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, ये पढ़ाई की हुई है, इसने वहां बड़े अस्पताल में काम किया हुआ है, मेरे को हार्ट की बीमारी, इसके पास जाऊं तो ठीक हो जाए, 10 लोग उसको बता दें तो निश्चय हो गया। अब डॉक्टर के पास मरीज, उस डॉक्टर के पास वो मरीज गया, अभी उसको निश्चय है, विश्वास नहीं है, फिर उससे दवाई लेता है, दवाई लेता है, दवाई से ठीक हो जाता है, विश्वास बैठ गया, फिर एक दो को और बताता है, अपनी पत्नी को बताता है, उसको भी जब तकलीफ होती है उसके पास लेके जाता है, वो भी ठीक हो गई, फिर अपने दोस्त को बताता है, दोस्त के पास, दोस्त भी ठीक हो गया, फिर किसी और पड़ोसी को बताया, वो भी ठीक हो गया, और विश्वास गहरा हो गया। तो विश्वास गहरा हो गया, फिर मन उसमें टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है कि नहीं यही सबसे अच्छा डॉक्टर है, एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया, फिर उसके बाद जब एकाग्रता हो जाती, कुछ भी बात होगी ना तो उसको ही जाके बताएगा, एकाग्र हो गया तो फिर क्या होता है, दृढ़ता आ जाती है कि डॉक्टर को मैंने फोन पे बता दिया ना, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बाबा के साथ है। तो निश्चय पहले भर जाए, जब निश्चय से जब हम भर जाते हैं, विश्वास अंदर बैठ जाता है, और फिर हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है। और एकाग्रता आने के बाद फिर दृढ़ता आ जाती है। जब दृढ़ता आ जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी स्थिति से क्या होने लगता है, फिर क्या होने लगेगा, ये चारों चीजें आने से फिर हम, फिर क्या हो जाएगा, साफ दिल तो पहले हो गया, फिर जो है हमारा कनेक्शन निरंतर जैसे बाप से लगा ही रहता है हमेशा दृढ़ता से, तब संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। फिर हमें जैसे अमृत वेले है कैसे योग करना है बाबा के साथ, स्नान करते समय कैसे बाबा से याद बनी रहे निरंतर, बाबा ने कहा ना एक भी वैध संकल्प आवे नहीं, एक भी वैध संकल्प आवे नहीं निरंतर, ये मन की सिद्धि होनी चाहिए, संकल्पों की सिद्धि होनी चाहिए, वैध की जरा भी एंट्री ना हो, एकाग्र फिर हो जाएगा। जब हम हर बात के लिए बाबा को यूज करेंगे तो सच्ची दिल साफ दिल वाला ही बाबा को बार बार यूज, मन मन जीत वाला ही बाबा को निरंतर यूज करेगा, कुछ भी बात होगी दुनिया की तरफ नहीं भागेगा, इसके पास भागू उसके पास ऐसा नहीं भागेगा, एक बार बार बाबा की तरफ ही भागेगा, मन बार बार बाबा की तरफ जाएगा, संकल्प बाबा की तरफ, कुछ भी होगा बाबा की तरफ जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिक हमारा जो है पुराने संस्कार विक्रम जो हमारे मेमोरी मॉलिक्यूल्स बन गए ना, वो पुराने मॉलिक्यूल्स खत्म होते जाएंगे और नए मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, जो एबीसीडी के मॉलिक्यूल्स जैसे बनते जाएंगे, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो उससे हमारा मन और शुद्ध होता जाएगा। हमें दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है किंतु मन और संस्कार हमको परिवर्तन करने, मन पे जीत हमको पानी है, क्योंकि मन को खराब हमने किया है। और आपको पता हो जब भी हम कोई विचार करते हैं, एक संकल्प करते हैं, एक विचार करते हैं, ये विचार पूरे के पूरे विश्व में जाते हैं, जैसे वाइब्रेशन फैलती है ना, जैसे लहर कोई सागर में कोई पत्थर डालो तो लहरें चारों तरफ फैल जाती है, झील में पत्थर डालो चारों तरफ लहरें फैलती हैं और फिर वापस आती हैं, तो मैं जैसा संकल्प करता हूं वो सारे विश्व में फैलता है और वहां से कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस मेरे पास आता है। मैंने बुरा संकल्प किया कोई देह विमान के वश विकारों के वश किया, पूरे विश्व में हर मॉलिक्यूल हर अणु पर उसका असर होता है और वो जाकर के वापस मेरे पास आता है। तो इस सृष्टि को तमोप्रधान हमने ही बनाया है। अब जब हम बाबा की याद में संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प करेंगे, तो यही अच्छे संकल्प सच्ची दिल साफ दिल से संकल्प करेंगे, मन को कंट्रोल करके एकाग्र करके दृढ़ता से संकल्प करेंगे, बाबा की याद के संकल्प करेंगे, तो ये संकल्प सारे विश्व में जाएंगे। और आपको जैसे हम बाबा के साथ जितनी उचित स्थिति में बैठ के, कहां बैठ के करें, परम धाम में बैठ के करें, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठ के ये संकल्प करें, तो क्या होगा, सारे विश्व में जैसे बूस्टर होते हैं ना, आपने देखा इंटरनेट लगते हैं ना, इंटरनेट लगते हैं या टेलीविजन के भी कनेक्शन होते हैं तो बीच बीच में बूस्टर्स होते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे विश्व में हर जगह फैले हुए हैं, शायद ही को देश बचाओ जहां पर बाबा के बच्चे ना हो, बाबा के सेंटर्स ना हो, तो ये पहले वहां वाइब्रेशन वहां से सारे विश्व में उन सेंटर्स में जाए, बाबा से लिए और फिर उन आत्माओं के पास पहुंचे और उन आत्माओं से फिर बूस्ट होके आगे फिर आसपास जो अभी जिनको संदेश नहीं मिला है उन तक ये वाइब्रेशन टच करें, ज्ञान के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, रूहानी प्रेम के वाइब्रेशन, अतिंद्रिय सुख के वाइब्रेशन, आनंद के वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशन, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही मनसा सेवा सारे विश्व में होती रहेगी। जब मेरे विचार नॉर्मली जैसे बताया, एक वक्त कभी आपको पता भी हो, नॉर्मली हम एक मिनट में 15 विचार करते हैं, साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, नॉर्मली हम एक मिनट में 15 विचार करते हैं, किंतु जब हम देह के विचार करते हैं, देह के संबंधों के विचार करते हैं, देह के स्वभाव संस्कार के बारे में सोचते हैं, विकारों के बारे में सोचते हैं, देह के पदार्थों के बारे में सोचते हैं, तो विचार बढ़ जाते हैं, 20 पे चिंता होने लगती है, 25 पे भय लगने लगता है, 30 पे इरिटेशन चिड़चिड़ापन आने लगता है, 35 विचारों पे गुस्सा आने लगता है, 40 पे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, 45 पे पागल जैसे हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम अपने को एबीसीडी रिवाइज करना शुरू करें, बाबा की मुरली को रिवाइज करना शुरू करें, मन मन में चिंतन करना शुरू करें, मनन चिंतन मंथन और दादी जी जो बताती है, दादी जानकी जी जो बताती है ना, मनन चिंतन मंथन और अगर ये करें, मनन चिंतन मंथन करें और उसमें फिर मगन हो जाएं, तो हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। आठ विचार हो गए मन शांत होने लगता है, छह विचार हुए रूहानी प्यार की अनुभूति होने लगती है, चार विचार हुए अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, दो विचार हो गए आनंद की अनुभूति होने लगती है, एक विचार हो गया तो सर्वशक्तिवान परम धाम की अनुभूति होने लगती है, दो विचार में बाबा की गोद की अनुभूति होने लगती है, और जब एक विचार हो गया सिर्फ बाबा आनंद माना मैं बाबा का बाबा मेरा से, दो विचार आत्मा और बाबा, चार विचार माना आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, और जब एक ही विचार रह गया सिर्फ बाबा रह गया तो क्या होगा, सारे विश्व में अपने आप शांति के प्रेम खुशी आनंद और शक्ति के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, अपने आप आत्मा को अनुभूति होगी हम आत्मा है देह नहीं है, उनको टच करेगा बाबा कहते हैं उनके हिम्मत की टांग नहीं है, उनके अंदर हिम्मत की टांग आएगी, वो भागेंगे उठ के सेंटर की तरफ, माउंट आबू की तरफ, मधुबन की तरफ, कहां है भगवान कहां है बाबा, तब उनको टच होगा, कहीं भी सुनेंगे तो उनको टच होगा, जैसे धरती अभी बहुत कठोर है धरती नरम होती जाएगी, धरनी नरम हो जाएगी, फिर उनको बाबा का संदेश मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह सच्ची दिल साफ दिल और मनजीत जब हो जाएंगे हम तो इससे ऑटोमेटिक बेहद की मनसा सेवा होती रहेगी। ओम शांति।